ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ചാപ്റ്റർ 18, ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 25. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന ഗ്രഹണ കരണേക്കിലേ പൂരി ശ്രദ്ധ പ്രേം വിശ്വാസ് ഓർ ഭൗതിക ആസക്തി തഥാ വിചാരോ കാ പരിത്യാഗ് കർക്കെ മംഗളാചരണ കരേംഗേ താക്കി ഹം ജോ അധ്യയൻ കരനേ വാലേ ഹൈ ഉസ്കാ പൂരാ പൂരാ ലാഭ പ്രാപ്ത ഹോ സകേ ജോ കി ഹൈ കൃഷ്ണ പ്രേം കി പ്രാപ്തി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരന്തസ്യ ജ്ഞാനഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരോന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഃ കദാമഹയം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേ അഹം ശ്രീഗുരുഃ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുന് വൈഷ്ണവാശ്ച ശ്രീരൂപം സാദൃശാതം സഹഗണരഘുനാഥാൻവിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലലിത ശ്രീവിശാഖാൻവിതാശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപീശ ഗോപീകാന്ത ശ്രീരാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചനം ഗൗരംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനോ സൂതദേവീ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭയശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതം ഗദാധരം ശിവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത മാത കീ ജയ ഹോ. ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 18, ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 25. ഭഗവാൻ കേത്തെ ഹൈ അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാം അനപേക്ഷ്യ ച പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ യത് തമസമുച്യതേ. ഫിസി അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാം അനപേക്ഷ്യ ച പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ യത് തമസമുച്യതേ. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാം അനപേക്ഷ്യ ച പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ यस्तत्तामसमुच्यते। वंस लास्ट, पढ़ो सब। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहाधारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। शब्दों का अर्थ देखिए। अनुबंधम यानी भावी बंधन, बंधन बोलते हैं बंधन, और अनु मतलब फ्यूचर में हमें बंधन लगेगा। क्षयम मना विनाश, और हिंसात मतलब तथा अन्यों को कष्ट। अनपेक्ष यानी परिणाम पर विचार किए बिना। पौरुषम मतलब सामर्थ्य को, और मोहात मतलब मोह, यानी कि कोई परिणाम का विचार नहीं करते हैं, कोई ये नहीं देखते कि फ्यूचर में इसका क्या परिणाम निकलेगा और बंधन का कारण बनेगा, हमारा विनाश होगा, या बस दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है। और पौरुषम यानी अपने सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं। मोहात मतलब मोह से करते हैं, गुमराह होते, कोई भी शास्त्र विधि नहीं होती है। और आरंभते यानी कि प्रारंभ किया जाता है कर्म, ऐसा कर्म यत तामसम उच्यते, मतलब ऐसा कर्म तामसी कर्म कहलाता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमें अभी कर्मों के विषय में बता रहे ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पहले तीन टाइप के ज्ञान के विषय में बताया कि ज्ञान कौन कौन सा सात्विकी होता है, राजसी होता है और तामसी होता है। उसके बाद श्लोक नंबर 23 से हमें भगवान कर्म के विषय में बताना शुरू कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने 18.23 में भगवान ने हमें क्या बताया, नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियत है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक है। उसके बाद भगवान ने हमें राजसी कर्म बताया। श्लोक नंबर 24 में भगवान ने कहा, यत्तु कामेत्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसं मुदाहृतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक यानी कि बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना, ऐसे किया जाता है एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है। मिथ्या अहंकार कौन सा है कि हम यह शरीर हैं और शरीर से अपने आप को संबोधित करके जो कार्य किया जाता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम से किया जाता है ऐसा कर्म। अभी कर्म के विषय में पढ़ रहे हैं तो ऐसा कर्म कौन सा होता है, रजोगुणी होता है। और आज हम तमोगुणी कर्म के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अनुवाद देखिए, जो कर्म मोहवश, मोहवश माना शास्त्रीय आदेश की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है उसे तामसी कहा जाता है, यानी वह तामसी कहलाता है। कौन सा, जो मोह से किया जाता है। मोह का क्या मतलब होता है, गुमराह होते हैं, कोई अक्कल नहीं होती है, दिमाग काम नहीं करता है और शास्त्रों का कोई सहारा नहीं लेते हैं और कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शास्त्रों के विषय में सोचते नहीं कि शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं, बल्कि ये कहूँ अगर तो गलत नहीं होगा। सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे यहाँ पर, आज की कम्युनिटी जितने भी हमारे लोग सामने हमारे आते हैं वो शास्त्र के आदेशों का पालन करके कार्य नहीं करते हैं, बल्कि मोह में कि मेरे बड़ों ने ऐसा किया था तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, बस ऐसा है। बाकी शास्त्र में इस कर्म को लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है कोई सोचने को भी तैयार नहीं, कोई देखने को भी तैयार नहीं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कर्म को जो भावी बंधन का कोई भी ख्याल नहीं रखते और दूसरों को कष्ट, अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए भी ऐसा कार्य किया जाता है, हिंसा का कार्य होता है, जैसे पशुवध ऐसे शास्त्र में कैसे उसका उच्चारण किया गया है या किस तरह से बताया गया वो भी नहीं बताया गया। और दूसरा भी यहाँ पर कि शास्त्रों की अवहेलना करके जो भी कार्य किया जाता है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 23, 16 चैप्टर का जो 23 श्लोक है ना, उसमें ऐसे कर्म के विषय में तो इतना सुंदर बताया है कि हर एक आप में से सब लोग ये वाला श्लोक याद कर लो और हर एक के सामने पढ़ के बताना। टेक्स्ट नंबर 23 श्लोक चैप्टर नंबर 16.23। और जब भी कोई इस तरह का अशास्त्र विधि कार्य करता है, शास्त्र के विधि के अनुसार नहीं करता है, तो उसको ये पढ़ के बताना चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान ने भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 टेक्स्ट नंबर 23 में बताया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिं न वाप्नोति न सुखं न परं गतिं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, उत्सृज्य का मतलब होता है त्याग देते हैं, यानी कि जो मोह से कार्य करते हैं, जैसे आज हम तामसी कार्य पढ़ रहे हैं ना, वो करते हैं और शास्त्र की विधि विधानों का कोई पालन नहीं करते हैं। वर्तते कामकार, तो वो क्यों कार्य कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूरी पूर्व करने के लिए कार्य कर रहे हैं और वो भी शास्त्रों की अवहेलना करके, मोह के वश में होकर। और उनका क्या रिजल्ट निकलता, भगवान कहते हैं न सिद्धिम अवाप्नोति, उन्हें कभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली, ना सुखम, उन्हें जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा, ना इस लोक में, ना ही परलोक में, और ना ही परम गति प्राप्त होगी, और ना ही उनको जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। अनुवाद देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, सारे लोग मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, मनमाना ढंग ही हुआ ना, जो मेरे बड़े ने बोला, बड़ों ने बोला है तो ठीक है, लेकिन पहले देखो तो सही, शास्त्र में उसका कोई प्रमाण मिलता है? कोई नहीं देखता, सब अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं और भगवान कहते हैं उसे ना तो सिद्धि ना सुख और ना ही परम गति प्राप्त होती है। और शास्त्रों की विधि क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में बताएंगे। चैप्टर नंबर 16 टेक्स्ट नंबर 23 तात्पर्य को देखिए। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई। अब जितने भी शास्त्रों के विधि है ना, जैसे आप कहीं पर भी हो, वर्ण आश्रम के किसी भी स्टेज पर हो, तो शास्त्र में आपके आपके लिए बताया गया है। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता में भी हमें सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके कार्य मिलते हैं कि उनको क्या क्या शास्त्र विधि के अनुसार उन्हें क्या क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 18.41 में, भगवान कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुण। हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। क्या किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते 18.42 में, शमोदमस तपशौचम शांतिराजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तेख्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के कौन से कर्म होते हैं, ब्राह्मण को क्या कार्य करना चाहिए, शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनसे ब्राह्मण कार्य करता है। फिर क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, शौर्यं तेजोदितेर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपरायणं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। 43.18.43 में भगवान बताते हैं, वीरता, क्षत्रिय संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व के, ये सब क्षत्रिय के स्वभाव कर्म है। और वैश्यों को क्या है, 44 में बताया भगवान ने, कृषि कारक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्या मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि करना, गौ रक्षा करना तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म है। शर्म तथा अन्यों की सेवा करना, और भगवान ने आगे बता दिया 45 में, बहुत सुंदर शब्द है। भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान ने कहा अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम उसे मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण से सुनेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ तक तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें सारे शास्त्र की विधि के अनुसार हमें बताया कि कौन कौन से किसको कर्म करने होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने कर्मों को करते हुए किस तरह से सिद्धि प्राप्त होगी। महाप्रभु कहते हैं चारे वर्ण आश्रम यदि कृष्ण नाही भजे सौ स्वकर्म करिते रव रवि परे मजे। तुम भले कितने ही अपने कर्मों का पालन करते रहो, यदि उसमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा, कृष्ण श्रवण, कृष्ण कीर्तन का सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी नरक में चले जाओगे। यही चीज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 16.23 में हमें बता रहे हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। क्योंकि शास्त्र कहता है आपको ये वर्ण आश्रम धर्म क्यों दिया गया, ताकि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए आप भगवान को प्राप्त करो। यदि आप वहां तक रसाई नहीं है, आपकी वहां तक आप नहीं पहुंच रहे हो, तो आप नरक में जाने के अधिकारी बन जाते हो। तो आज के श्लोक में शिवपाद जी हमें तात्पर्य बहुत सुंदर समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद शिवपाद की जय हो। चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 25 तात्पर्य को देखिए। तात्पर्य में शिवपाद जी कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को जिन्हें यमदूत कहते हैं देना होता है। यानी कि कर्मों का लेखा दो जगह पर देना होता है। कभी यहाँ पर हम संसार में होते ना, तो जो गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है उसको हमें फॉलो करना होता है। यदि नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के जो अफसरान है वो जब आएंगे, हम सारे ऑफिसर्स हमें जब बोलेंगे कि भाई आपने ये कार्य नहीं किया, कोई भी संसार में आप रह रहे हो तो गवर्नमेंट के आपको आदेशों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। और उसी तरह से यमदूत भी आएंगे एक दिन, जो कि भगवान की गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स हैं, पुलिस हैं, ऑफिसर्स हैं, वो आएंगे और आपको उनको भी अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा। यहाँ की पुलिस से तो हम घूस देकर बच सकते हैं, या फिर और कोई तरीका उनकी आंखों में धूल डालने का हम कर सकते हैं, लेकिन जो यमदूत है ना, उनके पास पूरा एकदम हमारे हर कर्म का चश्मदीद गवाह है, जो कि परमात्मा के रूप में हमारे अपने अंदर बैठा हुआ है, और वो सारी रिपोर्ट उन्हें दे रहा है। तो फिर हम उस टाइम पर हम कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते, कुछ भी हम अपने बचाव के विषय में कोई वकील नहीं कर सकते। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें अपने कर्मों का लेखा यमदूतों को, राज्य के इन सबको देना पड़ता है, गवर्नमेंट्स को। और उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है। यानी कि अगर आपने अपने कर्मों का उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हो, अपना नियत कर्म सही नहीं कर रहे हो, आप जहाँ जिस स्टेट पर हो उसे जो आपको कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, तो वो विनाशकारी है, आपका सर्वनाश करेगा। क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यानी कि एक आप अगर कार्य नहीं करते हो शास्त्रों के आदेशानुसार, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हो, ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी, उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, शास्त्र आदेशों का विनाश हो रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है तो वो विनाशकारी कार्य होगा, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो तमोगुणी कार्य। आगे श्री पापा जी बोलते हैं यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हो, अपना कार्य सही नहीं कर रहे हो, तो दूसरों को उससे दुख मिलता है, सबको दुख पहुंचाने वाला होता है। इवन आप अगर ग्रस्त हो, घर में रहकर आप अपने कार्य को पूरा सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तो समझो क्या होगा, दूसरे जितने भी घर के मेंबर्स हैं उनको कष्ट होगा कि भाई देखो ये अपना काम सही नहीं कर रही। आप स्टूडेंट हो, ब्रह्मचारी हो, आप स्टडी सही नहीं कर रहे हो तो दूसरे मम्मी पापा और जो आपको इतनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं तो उन सबको दुख मिलेगा। तो जो भी आप अपने कर्तव्य, जब भी जहां पर आप अपने कर्तव्य को के पालन से चूकते हो ना, तो समझो सबके दुख का कारण आप बनते हो। इसको बोलते हैं ना, यहाँ पर बताया ना भगवान ने, क्षयम हिंसा, ये दूसरों को दुख देता है जब आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हो। और क्यों करते हो? क्योंकि आप उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते ही नहीं हो, क्योंकि आप मनुष्य हो, आपको जिस जगह पर आप हो वहां पर आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान श्री कृष्ण ये पूरा जो पूरा चैप्टर है ना, वो पूरा त्याग को समझा रहे हैं अर्जुन को। देखो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ सकते, आपको नियत कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। और आज बता रहे कर्ता को, अगर तुम ऐसा करोगे, शास्त्र में लिखा हुआ है कि क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। तुम लड़ाई करना नहीं चाह रहे हो, शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हो, तो सारी दुनिया को दुख देने के कारण तुम बनोगे, क्योंकि आतताई बढ़ जाएंगे, अपराधी बढ़ जाएंगे। और जब अपराध बढ़ जाएगा तो संपूर्ण मानव समाज को इसका दुख भोगना पड़ेगा, और उसका पूरा का पूरा तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें यह युद्ध करना पड़ेगा। और तुम चाहते हो कि मैं भाग जाऊं इसको छोड़कर, तो ये अगर तुम करोगे तो ये बहुत तुम मतलब गलत कर रहे हो, ये तामसी कार्य कर रहे हो। ये कर्म जो है वो तामसी कर्म है। ये मत समझना कि मैं अच्छा बच्चा हूं कि ना लड़ाई नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। यहाँ बस आप भगवान पापा जी बता रहे हैं, उत्तरदायित्व ही से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। बस अपने आधार पर, शास्त्र की बात नहीं होती है, बस जो मुझे समझ में आया कि नहीं भाई आतताइयों को नहीं मारना चाहिए, खाम खा मारूंगा तो पाप लगेगा, ये सब तुम्हारी कहने की बात है। बाकी शास्त्र क्या कहता है, तुम क्षत्रिय उठो और लड़ाई करो। और आगे श्री पापा जी बता रहे हैं, यह मोह कहलाता है। जब मोह हो जाता है ना, तो तमोगुण जब हम पे हावी हो जाता है तो मोह हो जाता है, और हम सही और गलत को नहीं जज कर पाते कि हमारे लिए क्या आदेश है, क्या हमारे लिए आदेश नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नियत कर्म क्या है, वो हम लोग जज नहीं कर पाते, तो रोंग कर बैठते हैं। रोंग क्या है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करने से मुकर जाते हैं। तो श्री पापा जी बोलते हैं कि यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुणी, तमोगुण के फलस्वरूप होता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तमोगुण है, अज्ञानता है, आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। यदि आप शास्त्र का ज्ञान हासिल हो जाएगा, आपको इवन खाली भगवदगीता के 700 श्लोक भी अगर आपको समझ में आ जाएंगे, तो आप कभी भी अपने कर्तव्यों का पालन करने से नहीं डरोगे, नहीं हिचकिचाओगे नहीं, क्योंकि ये सारे कार्य हमें करने हैं। और इन्हीं कार्यों के जरिए, ये सारे कार्य हम क्यों हमको मिले हैं, कर्मों के हिसाब से, हमने जितने भी कर्म किए हैं उनके अनुसार ये सारे कार्य हमें करने पड़ते हैं और इनको निभाना पड़ता है। यदि हम नहीं निभाते हैं तो यह जो है वो तमोगुणी कर्म है, और ये हमें कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कराएगा। ये जो कर्म है वो हमारे अगले भावी बंधन, यहाँ पर बताया गया ना भगवान ने, देखो फर्स्ट शब्द क्या बोला है, अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्ष च पौरुषम। अनुबंधम का क्या मतलब है? भावी बंधन। और अनपेक्ष मतलब परिणाम, यानी कि जब आप तमोगुण में रहकर कार्य करते हो तो भावी बंधन का आपको कोई भी सोच नहीं होती है और ना ही परिणाम का विचार करते हो। और यदि आप जानना चाहते हो कि तमोगुण के कार्य का क्या परिणाम होता है, इस तरह से अगर जानना है तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 14.18 में कि अगर आप ऐसे करोगे, क्या ना तमोगुण में रहकर कार्य करोगे, तो तमोगुणी कार्य का क्या फायदा, क्या रिजल्ट निकलेगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 14 टेक्स्ट नंबर 18 की दूसरी लाइन देखिए, जगन्य गुण वृत्तस्था अदव गच्छन्ति तामसा। जगन्य गुण, जगन्य का क्या मतलब होता है? जो बहुत ज्यादा कंडम वर्क्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा घृणित कार्य होते हैं, यानी कि अपने शास्त्रों के अनुसार जो कार्य आप करते हो तमोगुण में, मोह में रहकर करते हो, जगन्य गुण वृत्तस्था, यानी कि जो वृत्तियां जो आप तमोगुण में रहकर करते हो, अधो गच्छन्ति, अधो माना नीचे, नरक की ओर में आपको ले जाएंगे तामसा, यानी तमोगुणी लोक जो है वो बेशक आपको नरक की ओर लेकर जाएंगे। तो हमें अपने भावी बंधन का मतलब यही है, अनुबंधम कहा गया ना, कि नेक्स्ट जन्म में आपको बहुत ही कष्टदायक हो सकता है, आपको नरक में जाना पड़े, और उसके साथ साथ में पशु योनियां प्राप्त करनी पड़े, फिर ना जाने कितने करोड़ जन्मों के बाद फिर से मनुष्य जन्म मिले या ना मिले, ये सब सोच विचार के बगैर जो कार्य करते हैं और सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, है ना। अक्सर लोग मुझे बोलते हुए हम सुनते हैं, देखा जाएगा, आगे किसने देखा है, अभी तो मजा करो। तो ये जो सोचते हैं और शास्त्र विधि का पालन नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो कभी भी न सुखम न परम गति न च सिद्धि, उन्हें ना कभी सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख मिलता है और ना ही परम गति प्राप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। हरि बोल।